पुराने ढंग के न्यूयॉर्क वाले 7 बजे रात का खाना खाते थे और खाने के बाद मिलने जाने का चलन आर्चर की मंडली चाहे जितना मजाक उड़ाए अब भी खूब चलता था। युवक वेवरली प्लेस से 5वीं एवेन्यू चढ़ रहा था तो लंबी सड़क सुनसान थी, बस रेजी चिवर्स दंपति के घर के आगे गाड़ियों की कतार। वहां ड्यूक के लिए भोज था और कहीं कहीं कोट मफलर में कोई बुजुर्ग भूरी सीढ़ियां चढ़कर गैस रोशन दालान में समा जाते। वॉशिंगटन स्क्वायर पार करते हुए आर्चर ने देखा कि बूढ़े मिस्टर दुलाक अपने चचेरे भाइयों डैगोनेट से मिलने आए हैं और वेस्ट 10वीं स्ट्रीट के मोड़ पर उसे अपने ही दफ्तर के मिस्टर स्किपवर्थ दिखे, जरूर लैनिंग बहनों से मिलने जा रहे थे। 5वीं एवेन्यू पर थोड़ा और ऊपर बोफट नजर आया, अपने ही दरवाजे पर तेज रोशनी के आगे काली परछाई सा। वो अपनी निजी गाड़ी में उतरा और किसी अनजान शायद मुंह पर न लाने लायक ठिकाने की ओर चल दिया। उस रात न ओपेरा था न दावत, सो बोफट का निकलना बेशक चोरी छिपे का था। आर्चर ने इसे लेक्सिंगटन एवेन्यू पार के उस छोटे घर से जोड़ा जिसकी खिड़कियों में हाल में फूलों के बक्से और फीतेदार पर्दे लगे थे और जिसके नए पुते दरवाजे के आगे अक्सर मिस फैनी रिंग की कैनरी पीली गाड़ी खड़ी दिखती थी। श्रीमती आर्चर की छोटी फिसलन भरी दुनिया की सीमाएं तंग थीं। उसके बाहर नक्शे से लगभग परे वो इलाका था जहां चित्रकार, संगीतकार और लिखने वाले लोग रहते थे। इंसानियत के ये बिखरे टुकड़े समाज के ढांचे में घुलने की चाह कभी नहीं दिखाते थे। वे अजीब ढंग से जीते थे पर ज्यादातर भले लोग माने जाते थे, बस अपने में रहना पसंद करते थे। मेडोरा मैनसन ने अपने अच्छे दिनों में एक साहित्यिक सैलून खोला था जो जल्द बंद हो गया क्योंकि साहित्यकार वहां आने से कतराते थे। औरों ने भी यही कोशिश की और ब्लैंकर परिवार का घर था एक जोशीली बातूनी माँ और उसकी नकल करती 3 अस्त व्यस्त बेटियां, जहां एडविन बूथ, पैटी, विलियम विंटर, नया शेक्सपियर अभिनेता जॉर्ज रिग्नोल्ड, पत्रिकाओं के संपादक और संगीत नाटक के समीक्षक मिल जाते। श्रीमती आर्चर और उनकी मंडली इन लोगों से थोड़ा सकुचाती थी। वे विचित्र थे, अनिश्चित, उनके जीवन और मन की तहों में अनजानी चीजें थीं। आर्चर के घराने में साहित्य और कला का गहरा आदर था। श्रीमती आर्चर बच्चों को बताती कि समाज कितना सुखद और सुसंस्कृत था जब उसमें वॉशिंगटन अर्विंग, फिट्स ग्रीन हैलेक और दोषी परी के कवि जैसे लोग शामिल थे। उस पीढ़ी के सबसे नामी लेखक सज्जन थे। बाद के अनजान लोगों में सज्जनों के भाव रहे होंगे पर उनका मूल रूप रंग, बाल, मंच और ओपेरा से घनिष्ठ था। इन सब के कारण पुराने न्यूयॉर्क के पैमाने उन पर लागू करना बेकार था। मैं जब जवान थी, श्रीमती आर्चर अक्सर कहती, बैटरी से कैनाल स्ट्रीट तक हम सबको जानते थे और गाड़ी सिर्फ उन्हीं के पास होती थी जिन्हें हम जानते थे। तब किसी की हैसियत पहचानना बहुत आसान था, अब असंभव है और मैं कोशिश भी नहीं करती। उस खाई पर पुल केवल बूढ़ी कैथरी निनगट बांध सकती थी जिनमें नैतिक पूर्वाग्रह नहीं था और बारियों की परवाह भी नहीं, पर उन्होंने जिंदगी में न कोई किताब खोली थी न कोई चित्र देखा था और संगीत उन्हें केवल इसलिए भाता था कि वो तुइलरी के वैभव दिनों की इतालवी ओपेरा की जश्न भरी रातें याद दिलाता था। हिम्मत में उनकी बराबरी करने वाला बोफर्ट शायद ये मेल करा देता, पर उसका आलीशान महल और रेशमी मोजों वाले नौकर सहज मेलजोल में बाधा थे। ऊपर से वो भी बूढ़ी मिनगट जितना ही अनपढ़ था और लिखने वालों को अमीरों के मनोरंजन के लिए रखे गए ठेकेदार भर समझता था और उसकी राय बदलने लायक अमीर किसी ने आज तक उस राय पर सवाल नहीं उठाया था। न्यूलैंड आर्चर बचपन से ये बातें जानता था और इन्हें अपने ब्रह्मांड के ढांचे का हिस्सा मानता था। वो जानता था कि ऐसी सोसाइटियां हैं जहां चित्रकार, कवि, उपन्यासकार, वैज्ञानिक, यहां तक कि बड़े अभिनेता भी ड्यूकों जितने चाहे जाते हैं। वो अक्सर उन बैठकों की कल्पना करता जहां बातचीत पर मेरी में, जिसकी अनजान स्त्री के नाम चिट्ठियां उसे प्रिय थी, थैकरे, ब्राउनिंग या मॉरिस का राज हो, पर न्यूयॉर्क में ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती थी। सोचते ही मन उलझ जाता था। आर्चर ज्यादातर लिखने वालों, संगीतकारों और चित्रकारों को जानता था। वो उनसे सेंचुरी क्लब में या नए नए खुलते छोटे संगीत नाटक क्लबों में मिलता था। वहां उनका साथ भाता। ब्लैंकर के घर वो ऊब जाता जहां वे जोशीली मगर बेढंगी औरतों के बीच पकड़े अजूबों की तरह हाथों हाथ घुमाए जाते। नेड विंसेंट से सबसे दिलचस्प बातचीत के बाद भी आर्चर के मन में यही रह जाता कि उनकी दुनिया भी उसकी दुनिया जितनी ही छोटी है और दोनों को बड़ा करने का एक ही रास्ता है, तौर तरीकों का ऐसा स्तर जहां वे सहज
घुल मिल जाए। काउंटेस जिस समाज में जी थी दुखी हुई थी, शायद रहस्यमय खुशियां भी चखी थी। उसे याद कर ये विचार फिर मन में आया।
उसे काउंटेस का वो मजा लेता चेहरा याद आया जब उसने बताया था कि नानी मिंगट और वेलेंट परिवार को उसका लिखने वालों के बोहिमियन इलाके में रहना नागवार है। परिवार को इलाके का खतरा नहीं, उसकी गरीबी खलती थी, पर वो ये बारीकी पकड़ नहीं पाई और समझती रही कि वे साहित्य को इज्जत पर धब्बा मानते हैं। उसे खुद साहित्य से कोई डर न था। उसके बैठक खाने में, जहाँ आम राय में किताबों का कोई काम नहीं, कई जिल्दें बिखरी रहती थी, ज्यादातर उपन्यास, पॉल बूर्जे, वीसमांस और गोंकूर बंधुओं जैसे नए नामों ने आर्चर का ध्यान खींचा था। उसके दरवाजे पर ये फिर महसूस करते हुए कि वो उसकी कदरों को कैसे उलट देती है, वो समझ गया कि काम आना है तो उसे जाने पहचाने से बिल्कुल
अलग हालात समझने होंगे।
नास्तासिया ने अपनी रहस्यमय मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। दालान की बेंच पर फर अस्तर वाला कोट, अंदर सुनहरे जेबी अक्षरों वाला मैट रेशम का मोड़ने लायक ओपेरा हैट और सफेद रेशमी मफलर पड़े थे। शक की गुंजाइश नहीं थी कि ये कीमती चीजें जूलियस बोफर्ट की है। आर्चर भड़क उठा, इतना कि अपने कार्ड पर दो शब्द घसीट कर लौट ही जाता, पर याद आया कि ज्यादा एहतियात में उसने चिट्ठी में लिखा ही नहीं था कि वो अकेले मिलना चाहता है, तो उसने किसी और मेहमान के लिए दरवाजा खोला। इसका दोष उसी का था। वो इस पक्के इरादे से बैठक खाने में घुसा कि बोफर्ट को जता देगा कि वो फालतू है और उससे देर तक टिका रहेगा।
बैंकर आतिशदान की टेक लगाए खड़ा था, जिस पर पुरानी कढ़ाई बिछी थी और पीतल की शमादानों में चर्च की पीली मोमबत्तियां लगी थी।
वो सीना फुलाए, कंधे आतिशदान से टिकाए, अपने बड़े बड़े वार्निश जूतों में से एक पर वजन डाले खड़ा था। आर्चर के घुसते समय बोफर्ट मुस्कुराते हुए मेजबान को ऊपर से देख रहा था। काउंटेस आतिशदान से समकोण रखे सोफे पर आधी लेटी थी। ऑर्किड और अजेलिया से लदी मेज आर्चर ने पहचाना, बोफर्ट के ग्रीन हाउस की भेंट पर्दे की तरह उसे घेरे थी। उसका सिर एक हाथ पर टिका था और चौड़ी आस्तीन कोहनी तक बांह उघाड़े थी। शाम को मेहमान बुलाने वाली महिलाएं प्रायः सादा डिनर गाउन पहनती थी। भेल की हड्डी वाले रेशम का कसा कवच गले पर जरा सा खुला, वो झिरी लेस की झालर से भरी कसी आस्तीनों में झालर बस इतनी कि कलाई दिखे, एट्रस्कन सोने का कंगन या मखमली फीता झलक जाए। पर काउंटेस परंपरा से बेपरवाह लाल मखमल का लंबा लबादा पहने थी, जिसकी ठुड्डी तक और सामने की पूरी पट्टी पर चमकीला काला फर लगा था। आर्चर को पिछली पेरिस यात्रा में देखा नए चित्रकार कारोलुस दुरां का एक चित्र याद आया। उसके चित्र सैलों में तहलका मचाए थे। उस चित्र की स्त्री ने भी ऐसा ही निडर लबादा पहना था, ठुड्डी फर में धसी, गर्म बैठक खाने में उस फर में
ढके गले और नंगी बाहों के उस मेल में कुछ उल्टा और उकसाने वाला था, पर असर मानना पड़ेगा सुहावना था। हे भगवान, स्क्वाटरक्लिफ में पूरे 3 दिन आर्चर के घुसते समय बोफर्ट अपनी हंसी उड़ाती आवाज में कह रहा था, अपने सारे फर साथ ले जाइए और गर्म पानी की बोतल भी। क्यों, घर इतना ठंडा है, उसने पूछा, बायां हाथ आर्चर की ओर इस ढंग से बढ़ाते हुए जो रहस्यमय ढंग से कहता था कि उस पर चुंबन की उम्मीद है। नहीं, ठंडी तो घर की मालकिन है, बोफर्ट ने युवक को लापरवाह सिर हिलाई देते हुए कहा, पर मुझे तो वे बहुत दयालु लगी, खुद न्योता देने आई। नानी कहती है जाना तो होगा ही, नानी तो कहेंगी ही, और मैं कहता हूँ अफसोस कि आप वो छोटी सीप दावत गवा देंगी जो मैंने रविवार को डेलमोनिको में आपके लिए सोच रखी थी, कैंपानीनी, स्काल्की और ढेर से दिलचस्प लोगों के साथ। उसने झिझकते हुए कभी बैंकर को कभी आर्चर को देखा। आह, ये तो सचमुच लुभाता है, श्रीमती स्ट्रदर्स की उस शाम को छोड़ दे तो यहाँ आने के बाद मैं एक भी कलाकार से नहीं मिली। कैसे कलाकार, मैं एक दो चित्रकारों को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग, आज्ञा हो तो ले आऊं, आर्चर ने साहस करके कहा। चित्रकार, न्यूयॉर्क में चित्रकार होते हैं, बोफर्ट ने ऐसे स्वर में पूछा मानो जब वो उनके चित्र नहीं खरीदता तो वे हो ही नहीं सकते। और काउंटेस ने अपनी गंभीर मुस्कान के साथ आर्चर से कहा, बहुत अच्छा लगेगा, पर मेरा मतलब असल में मंच के कलाकारों से था। गायक अभिनेता संगी करार, मेरे पति का घर हमेशा उनसे भरा रहता था। उसने मेरे पति ऐसे कहा जैसे इन शब्दों से कोई मनहूसियत चिपकी ही न हो, लगभग उस स्वर में जो ब्याहता जीवन की खोई खुशियों के लिए आह भरता है। आर्चर ने उलझन से उसे देखा। लापरवाही या पर्दादारी, जो अपनी साख दांव पर लगाकर अतीत से नाता तोड़ रही है, वो उसी अतीत की बात इतनी हल्की कैसे कर सकती है? मुझे लगता है, वो दोनों से बोली, अनपेक्षित चीज ही आनंद बढ़ाती है। रोज वही चेहरे देखना शायद एक भूल है। जो भी हो, ये जानलेवा उबाऊ है। न्यूयॉर्क ऊब से मर रहा है, बोफ्ट भुनभुनाया, और जब मैं आपके लिए उसमें जान डालने चलता हूँ तो आप मुझे छोड़ देती हैं। चलिए फिर सोचिए, रविवार आखिरी मौका है। कैंपानिनी अगले हफ्ते बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया चला जाएगा। मेरे पास अलग कमरा है, स्टाइनवे पियानो भी, और वे रात भर मेरे लिए
गाएंगे। कितना शानदार, मैं सोचकर कल सुबह आपको लिख दूं, उसने मीठे स्वर में कहा, पर आवाज में विदा की हल्की सी झलक थी। बोफर्ट ने उसे भांपा, और चूंकि इनकार उसकी आदत में नहीं था, वो भौहों के बीच जिद्दी सिलवट डाले उसे घूरता रहा। अभी क्यों नहीं, इतनी रात गए तय करने के लिए ये मामला बहुत गंभीर है, आपको देर लगती है, उसने ठंडी निगाह से उसका जवाब दिया। हाँ, क्योंकि मुझे अभी मिस्टर आर्चर से थोड़ा काम की बात करनी है। आह, बोफर्ट रूखा बोला, उसके स्वर में अपील की गुंजाइश न थी। हल्के कंधे उचकाकर उसने अपना संयम संभाला, उसका हाथ लेकर सधे अंदाज में चूमा और दहलीज से पुकारा, सुनो न्यूलैंड,
अगर तुम काउंटेस को शहर में रोक लो तो दावत में तुम भी शामिल हो, जाहिर है। और वो अपनी भारी रोबीली चाल से कमरे से निकल गया। एक पल को आर्चर को लगा कि मिस्टर लेटर ब्लेयर ने उसके आने की खबर दे दी है, पर काउंटेस की अगली बात इतनी बेमेल थी कि उसने ख्याल बदल दिया। तो आप चित्रकारों को जानते हैं, उनकी दुनिया में उठते बैठते हैं, उसने दिलचस्पी भरी आंखों से पूछा। ओ ठीक ठीक, ऐसा नहीं, यहाँ कलाओं की कोई दुनिया है, कोई भी, ये कहना मुश्किल है, वे तो बस एक पतली सी किनारी है बाहरी छोर पर आपको ये चीजें पसंद हैं? बेहद। पेरिस या लंदन में रहूं तो कोई प्रदर्शनी नहीं छोड़ता, साथ चलने की कोशिश करता हूं। उसने अपने लंबे घेरों के नीचे झांकती साटन की नन्ही बूट की नोक पर नजर झुकाई। मुझे भी बहुत लगाव था, मेरी जिंदगी इन्हीं से भरी थी, पर अब कोशिश कर रही हूं कि इनके बिना रहूं। इनके बिना, हाँ, मैं अपनी पुरानी जिंदगी पूरी छोड़ना चाहती हूँ,
यहाँ के सब लोगों जैसी ही बन जाना चाहती हूँ।
आर्चर का चेहरा तप गया। आप कभी औरों जैसी नहीं हो सकती, उसने कहा। उसने अपनी सीधी भौहें जरा उठाई। आह, ऐसा मत कहिए, काश आप जानते कि अलग होना मुझे कितना बुरा लगता है। उसका चेहरा किसी त्रासद मुखौटे सा स्याह हो गया था। वो आगे झुकी, दुबले हाथों से घुटना घेरे और निगाह उससे हटाकर अंधेरी दूरियों में गाड़ दी। मैं इस सबसे निकल जाना चाहती हूँ, उसने जोर देकर कहा। वो पल भर रुका, गला साफ किया। जानता हूँ, मिस्टर लेटर ब्लेयर ने मुझे बताया। अच्छा, इसीलिए आया हूँ, उन्होंने कहा था, आप जानती हैं मैं उनके दफ्तर में हूँ। वो जरा चौंकी, फिर आंखें चमक उठी। यानी ये काम आप मेरे लिए संभाल सकते हैं, मैं लेटर ब्लेयर की जगह आपसे बात कर सकती हूँ। ओह, तब तो कितना आसान होगा, उसके स्वर ने आर्चर को छू लिया और आत्मसंतोष के साथ उसका भरोसा भी बढ़ा। वो समझ गया कि काम की बात उसने केवल बोफर्ट को टालने के लिए छेड़ी थी, और बोफर्ट को भगा देना एक छोटी जीत थी। मैं यहाँ इसीलिए हूँ, उसी पर बात करने, उसने दोहराया। वो अब भी चुपचाप मुड़ी बांह पर सिर टिकाए बैठी थी, उसका चेहरा पीला और बुझा बुझा लग रहा था,
मानो पोशाक के गहरे लाल ने उसका सारा रंग सोख लिया हो। अचानक आर्चर को वो दया जगाने वाली बेचारी सी लगी। अब हम कठोर तथ्यों पर आते हैं, उसने सोचा, और उसी क्षण अपने भीतर वही सहज कतराहट महसूस की जिसकी आलोचना वो अपनी माँ और उनकी पीढ़ी में अक्सर करता था। असाधारण स्थितियों का उसे कितना कम अभ्यास था, उनकी शब्दावली तक पराई थी। ये बातें जैसे उपन्यासों और मंच की हों। आने वाली बातचीत के आगे वो किसी लड़के सा अनाड़ी और झेपा हुआ था। एक चुप्पी के बाद काउंटेस अप्रत्याशित आवेग से फूट पड़ी। मैं आजाद होना चाहती हूँ, सारा अतीत मिटा देना चाहती हूँ, समझता हूँ, उसका चेहरा खिल उठा।
तो आप मेरी मदद करेंगे। पहले वो हिचका, शायद मुझे कुछ और जानना चाहिए। वो हैरान दिखी। आप मेरे पति के बारे में जानते हैं, उनके साथ मेरी जिंदगी भी, उसने सिर हिलाया। तो और क्या चाहिए? क्या इस देश में ऐसी चीजें बर्दाश्त की जाती हैं? मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, हमारा चर्च ऐसे मामलों में तलाक मना नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। फिर दोनों चुप हो गए और आर्चर को लगा कि उनके बीच काउंट ओलेंस्की की चिट्ठी अपनी कुरूप सूरत लिए खड़ी हो गई है, आधा पन्ना भर, और जैसा उसने लेटर ब्लेयर से कहा था, एक भड़के हुए नीच की धुंधली तोहमत।
पर उसके पीछे कितना सच था, ये तो काउंट ओलेंस्की की पत्नी ही जान सकती थी।
आपने मिस्टर लेटर ब्लेयर को जो कागज दिए थे, मैंने देखे हैं, उसने आखिर कहा। तो क्या उससे ज्यादा घिनौना कुछ हो सकता है? नहीं, उसने पहलू जरा बदला और हाथ से आंखें ढक ली। आप जानती ही हैं, आर्चर कहता गया, कि अगर आपके पति ने मुकदमा लड़ने की ठान ली, जैसा वे धमकाते हैं, तो वे ऐसी बातें कह सकते हैं, आपके लिए अप्रिय, तकलीफ देह बातें, खुलेआम कहें तो वे फैले और आपको नुकसान पहुंचाए, चाहे मतलब वे चाहे जितनी बेबुनियाद हो। वो देर तक चुप रही, इतनी देर की आर्चर उसके साए ढके चेहरे को ताकते न रहने के लिए उसके घुटने पर रखे दूसरे हाथ की बनावट और चौथी पांचवी उंगलियों की तीन अंगूठियां तक मन में उतार चुका था,
जिनमें उसने गौर किया ब्याह की अंगूठी नहीं थी। और वे ऐसे इल्जाम यहाँ खुलेआम लगा भी दें तो मेरा क्या बिगड़ेगा?
उसका जी चाहा चीख पड़े, बेचारी, यहाँ जितना बिगड़ेगा उतना और कहीं नहीं। पर जवाब उसने उस आवाज में दिया जो खुद उसे लेटर ब्लेयर की लगी। न्यूयॉर्क का समाज आपने जिस दुनिया में जीवन बिताया उसके आगे बहुत छोटा है, और दिखावे के बावजूद उस पर चंद ऐसे लोगों का राज है जिनके विचार खासे दकियानुसी हैं। वो चुप रही और वो कहता गया, शादी और तलाक पर हमारे विचार खास तौर पर दकियानुसी हैं। हमारा कानून तलाक के पक्ष में है, हमारे सामाजिक रिवाज नहीं, कभी नहीं, खैर नहीं। जब तक स्त्री पर चाहे कितनी आहत कितनी बेदाग हो, रत्ती भर उल्टा दिखावा हो, जब तक लीक से हटे आचरण से उसने खुद को चुभते इशारों के आगे खोला हो। उसने सिर थोड़ा और झुका लिया और वो फिर इंतजार करने लगा, गुस्से के किसी उबाल की, कम से कम इनकार की एक छोटी चीख की उम्मीद में। कुछ नहीं आया। उसकी कोहनी के पास छोटी सफरी घड़ी हौले हौले टिकटिकाती रही, एक लकड़ी चटक कर दो हुई और चिंगारियां बिखर गईं। शांत धुंधलाया पूरा कमरा मानो आर्चर के साथ चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था।
हाँ, आखिर वो धीमे से बोली, मेरा परिवार भी मुझसे यही कहता है। वो हल्के से सिहरा, अचरज की बात नहीं, हमारा परिवार, उसने सुधार किया। और आर्चर का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि जल्द ही आप मेरे कजन होंगे, उसने कोमलता से जोड़ा, उम्मीद करता हूँ। तो आप भी उन्हीं की तरह सोचते हैं? ये सुनकर वो उठ खड़ा हुआ, कमरा पार किया, दीवार के पुराने लाल दमास्क पर टंगे चित्र को खाली आंखों से देखता रहा, फिर दुविधा में उसके पास लौटा। क्या कहे, सूझ नहीं रहा था, कैसे कहे। हाँ, अगर आपके पति का इशारा सच है या उसे झुठलाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं, सच पूछिए। तो वो बोल पड़ी, ठीक जब वो कहने जा रहा था। आर्चर ने आग की ओर देखा, सच पूछिए तो भयानक किस्सों की आशंका, बल्कि तयशुदा बाढ़ के बदले आपको ऐसा क्या मिलेगा? पर मेरी आजादी, क्या वो कुछ नहीं? उसी क्षण बिजली सा एक ख्याल उसके भीतर कौंधा, चिट्ठी का इल्जाम सच भी हो सकता है और वो अपने गुनाह के साझीदार से ब्याह की उम्मीद रखती हो। अगर सचमुच उसके मन में ये योजना थी तो कैसे बताए कि कानून इसके सख्त खिलाफ है। इस महज शक ने ही उसे उसके प्रति कठोर और अधीर बना दिया। पर क्या आप अभी ही हवासी आजाद नहीं, उसने जवाब दिया, आपको छू कौन सकता है? मिस्टर लेटर ब्लेयर कहते हैं पैसे का मामला निपट चुका। आह हाँ, उसने बेपरवाही से कहा, तो जो बेहद अप्रिय और तकलीफ देह हो सकता है उसका जोखिम उठाना क्या ठीक है? अखबारों को सोचिए, कितने कमीने हैं, सब कुछ मूर्खतापूर्ण है, तंग है, अन्यायपूर्ण, पर समाज को कोई नया तो नहीं गढ़ सकता। हाँ, उसने माना, और उसकी आवाज इतनी महीन इतनी बेसहारा थी कि आर्चर को अपने अभी अभी के कठोर ख्यालों पर पछतावा उमड़ आया। ऐसे मामलों में व्यक्ति लगभग हमेशा उस चीज पर कुर्बान होता है जिसे सबका हित कहा जाता है।
लोग हर उस रिवाज से चिपके रहते हैं जो परिवार को जोड़े रखे, बच्चों की रक्षा करे, अगर हो, वो कहता गया, होंठों पर चढ़ते बने बनाए वाक्य उंडेलते हुए उस चीज को ढक देने की गहरी चाह में जिसे उसकी चुप्पी ने मानो उघाड़ दिया था। जब वो हवा साफ करने वाला वो एक शब्द कहना न चाहती थी या न कह सकती थी, तो आर्चर उसे ये महसूस न होने देना चाहता था कि वो राज टटोल रहा है। जिस घाव का इलाज उसके पास नहीं, उसे कुरेदने से बेहतर था पुराने न्यूयॉर्क के सधे ढंग से सतह पर ही रहना। मेरा काम आप जानती हैं, उसने जारी रखा, ये है कि इन बातों को आप उन लोगों की नजर से देख सके जो आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं। मिंगट, वेलेंट, वान डेर लॉयडन, आपके सारे दोस्त और नातेदार, उनके परखने का ढंग ईमानदारी से न दिखाऊं तो ये बेइंसाफी होगी, है ना? उस खुली चुप्पी को ढंकने की धुन में वो जोर देकर लगभग गिड़गिड़ाकर बोल रहा था। हाँ, उसने धीरे धीरे कहा, बेइंसाफी होगी।
आग सुरमई राख बन चुकी थी और एक लैंप ध्यान खींचने की मशीनी कोशिश सा गड़गड़ाया। काउंटेस उठी, बत्ती ऊंची की और आतिशदान के पास लौटी, पर बैठी नहीं। उसका यों खड़े रहना मानो संकेत था कि अब कुछ कहने को नहीं बचा, और आर्चर भी उठ खड़ा हुआ। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करूंगी, वो अचानक बोली। खून आर्चर के माथे तक दौड़ गया। इस अप्रत्याशित समर्पण से हड़बड़ाकर उसने बेढंगेपन से उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं सचमुच आपकी मदद करना चाहता हूँ, उसने कहा। आप कर ही रहे हैं, शुभ रात्रि मेरे कजन।
वो झुका, उसके ठंडे निष्प्राण हाथों पर होंठ रखे, उसने धीरे से हाथ खींच लिए। आर्चर मुड़ा, दालान की मध्यम गैस रोशनी में कोट और टोपी उठाई और सर्दियों की रात के अंधेरे में निकल पड़ा। जो कह नहीं पाया था सब अब सीने में उमड़ रहा था, एक वाक्पटुता जो देर से आई थी।